अध्याय एक प्रस्तावना एक वेद का अर्थ वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु विद ज्ञाने से घय प्रत्यय करने पर बनता है इसका आशय है ज्ञान अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त किया था उसका संग्रह वेदों में है संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द चार धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है विद सत्तायाम होना दिवादि दो विद ज्ञाने जानना अदादि तीन विद विचारणे विचारना रुदादि चार विद लाभे प्राप्त करना तुदादि इसके लिए कारिका है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ श्यन लुक श्नम से स्विदम क्रमात् इन अर्थों का समन्वय करते हुए ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णु मित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धमादि पुरुषार्था इति वेदाः विष्णु मित्र अर्थात वेद शब्द का भावार्थ होता है एक जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है दो इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त होता है तीन इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है चार इनमें पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन किया गया है इस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय के सर्वांगीण विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं आचार्य सायण ने वेद शब्द की एक अन्य व्याख्या की है इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर् लौकिकम् उपायम् यो ग्रंथो वेदयति स वेदः तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचाने का उपाय करता है उसे वेद कहते हैं श्रुति निगम आगम त्रयी छंदस आमनाय स्वाध्याय वेदों के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है एक श्रुति वेदों को श्रुति भी कहते हैं इसका कारण यह है कि इन्हें गुरु परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा गया है गुरु परंपरागत पद्धति से वेदों के मंत्रों को शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य श्रवण मात्र से स्मरण करते थे इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि शिष्य मंत्रों के स्मरण में स्वर और उच्चारण संबंधी कोई भी त्रुटि न होने दे श्रुति शब्द व्यापक है यह वेदों के साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के लिए भी प्रयुक्त होता है अतएव ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के उद्धरणों को इति श्रुति कहकर उद्धृत किया जाता है दो निगम वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग होता है निगम का अर्थ सार्थक या अर्थबोधक है वेदों को साभिप्राय सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण निगम कहा जाता था तीन आगम आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है चार त्रयी त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है वेद त्रयी का अर्थ है तीन वेद ऋक् यजुः साम मीमांसा दर्शन में त्रयी शब्द तीन प्रकार की रचना का द्योतक है और इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है पद्यात्मक रचना ऋक् है गद्यात्मक रचना यजु है और गीतात्मक रचना साम है इस प्रकार अथर्ववेद भी त्रयी के अंतर्गत है पांच छंदस चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है पाणिनि ने बहुलम छंदसी सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा है छंदस शब्द छदि संवर्णे चुरादिगणी से बनता है इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना अपने मनोभावों या विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से पद्य में बद्ध किया जाता है अतः पद्यात्मक रचना को छंद कहा जाता है इसी अभिप्राय से यास्क ने निरुक्त में छंदासी छादनात कहा है छह आमनाय वेदों के अर्थ में आमनाय शब्द का भी प्रयोग होता है आमनाय शब्द ना अभ्यासे भ्वादिगणी से बनता है यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है दंडी ने दश कुमार चरित में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग करते हुए कहा है अधीति चतुर्सु आमनायेषु अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता श्रुति के तुल्य आमनाय शब्द भी ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का भी वाचक है सात स्वाध्याय शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का भी प्रयोग हुआ है स्वाध्यायोध्येतव्य अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है दो वेदों का महत्व अनेक दृष्टियों से वेदों को महत्वपूर्ण माना गया है। संकेत रूप में कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं। धार्मिक महत्व। वेद आर्य धर्म की आधारशिला है। धर्म के मूल तत्वों को जानने के एकमात्र साधन वेद हैं। वेदोखिलो धर्म मूलम। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञानमय कहा है, अर्थात वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। वेदों में मानव मात्र के कर्तव्यों का निर्देश है। यह कश्चित् कश्चित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्व ज्ञानमयो हि सः। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के प्रारंभ में ब्राह्मण का अनिवार्य कर्तव्य बताया है कि वह निःस्वार्थ भाव से वेदांगों के सहित वेदों का अध्ययन करे। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म सड़ंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। मनु ने वेदाध्ययन पर इतना अधिक बल दिया है कि ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन ही परम तप है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन न करके अन्य शास्त्रों में रुचि रखता है वह इस जन्म में ही सपरिवार शूद्र की कोटि में है। वेदमेव सदाभ्यस्येत तपस्तप्यं द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। यो अनधित्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। सांस्कृतिक महत्व। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वेदों और वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होता है। प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम आदि तथा मानव के कर्तव्यों का निर्धारण वेदों से ही किया गया था। सर्वेषां तु स नामानि कर्मणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रामाणिकता को मानना ही आर्यत्व एवं हिंदुत्व का मुख्य लक्षण बताया है। प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषु। आर्यों का यज्ञ पर अटूट विश्वास, एक देव को मानते हुए भी अनेक देवों की सत्ता मानना, निष्काम भाव से कर्म करना, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान और कर्म मार्ग का समन्वय, भौतिकवाद के प्रति अनास्था, पुनर्जन्म में विश्वास, जीवन का लक्ष्य मोक्ष आदि का वास्तविक ज्ञान वैदिक साहित्य से ही होता है। शास्त्रीय महत्व। सर्व ज्ञानमयो हि सः कहकर मनु ने वेदों को सभी विद्याओं का स्रोत बताया है। वेदों में दार्शनिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वृष्टि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र और विविध कलाओं का सैकड़ों मंत्रों में वर्णन है। वेदों के अध्यात्म और दार्शनिक तत्वों को लेकर ही विविध उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों की सृष्टि हुई है। आचार संहिता। वेद मानव मात्र के कर्तव्य बोध के लिए सबसे प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। इनमें कर्तव्य का यथास्थान विस्तृत वर्णन और प्रतिपादन है। इनमें गुरु, शिष्य, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, माता पिता, समाज और व्यक्ति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व, परोपकार, उद्योग, दान पुण्य, सत्कर्म एवं अतिथि सत्कार आदि का विस्तृत विवरण मिलता है। सामाजिक महत्व। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा समाज का विशद चित्रण वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। ऋग्वेद और अथर्वेद में तत्कालीन समाज और सभ्यता का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद में 50 से अधिक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। व्यवसायों से संबद्ध जातियों के नाम तथा उनके कर्मों का भी वर्णन है। संक्षेप में ब्राह्मण आदि के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञानार्जन, क्षत्रिय का रक्षा कार्य, वैश्य का व्यापार, वाणिज्य और शूद्र का शिल्प एवं श्रम श्राद्ध कार्य। ब्राह्मणे ब्राह्मणम्, क्षत्राय राजन्यम्, वरुद्भ्यो वैश्यम्, तपसे शूद्रम्। आर्थिक महत्व। वेदों में प्राचीन अर्थव्यवस्था का विशद चित्रण प्राप्त होता है। वेदों में कृषि, आदान प्रदान की व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य का स्वरूप, विविध धातुएं, नाप तोल के साधन, प्रचलित मुद्राएं, विविध शिल्प, अन्न वस्त्र आदि का क्रय विक्रय, ऋण दान आदि से संबद्ध सामग्री प्राप्त होती है। व्यापार में सफलता के लिए दो गुणों की आवश्यकता बताई गई है। एक, चरित्र की शुद्धि एवं व्यवहार कुशलता। दो, उत्थित श्रम, दृढ़ निश्चय और उत्साह। अर्थशास्त्र का मूल मंत्र है आदान प्रदान लेन देन। यजुर्वेद के एक मंत्र में इसका सुंदर प्रतिपादन है। क, सुनम नो अस्तु चरितमुत्थितम च। ख, देहि मे ददामि ते, नि मे धेहि, नि ते दधे। निहारम च, हरासि मे, निहारम नि हराणि ते। राजनीति महत्व। वेदों में राजनीति शास्त्र से संबद्ध सामग्री बहुलता से उपलब्ध है। इनमें विशेष उल्लेखनीय विषय है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य, राज्य के विविध अंग, राजा का निर्वचन, राजा के कर्तव्य, संविधान और विधि निर्माण, विविध शासन प्रणालियां, राज्य के संचालक, सभा समिति, विधि संसद आदि संस्थाएं, न्याय और दंड विधान, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कर निर्धारण, शस्त्रास्त्र आदि, प्रजा के कर्तव्य आदि का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वह राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा जागरूक रहे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्याम। प्रजातंत्रीय राज्य शासन सर्वोत्तम है। महते जान राज्याय। राजा का निर्वाचन होता था। विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु त्वाम विशो वृणताम राज्याय। सभा समिति और संसद की स्थापना। सभा च मा समिति चावताम प्रजापतेर दुहितरऊ सप्त संसदः। ऐतिहासिक महत्व। वेदों में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री भी प्राप्त होती है, जैसे नदियों के नाम इमम में गंगे, यमुने, सरस्वती, शुतुद्री, दशराज्ञ युद्ध, दश राजानः, समिता अयज्यवः, पंच जनाः, तुर्वशम यदुम, विभिन्न जातियों के नाम। भाषा वैज्ञानिक महत्व। संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि विश्ववाङ्मय में ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वेदों को ही आधार माना जाता है। इनसे तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान का विकास हुआ है। वैदिक भाषा का ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि से तुलनात्मक अध्ययन करके भाषाओं के विकास की परम्परा का स्पष्ट ज्ञान होता है। काव्यशास्त्रीय एवं साहित्यिक महत्व। वेदों में अनुप्रास, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अनेक मंत्रों में प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे यमक का प्रयोग कवि भीर निर्मिताम विताम। ऋग्वेद के उसह सूक्त में उषा का एक अत्यंत सुंदरी युवती और पत्नी के रूप में चित्रण है। उदय होती हुई उषा एक सुंदरी के तुल्य अपने वस्त्रों को चारों ओर फैलाती है। अवस्युमेव चिन्वति मघो न्यूषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वर जनन्ति सुभगा सुदंसा आंताद दिव पप्रथ आ पृथिव्याः। उषा का एक प्रेमिका के रूप में वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह सूर्य रूपी पति से मिलने के लिए मुस्कुराती हुई और अपने वक्षस्थल को अनावृत करती हुई सूर्य की ओर जाती है। कन्येव तन्वा शाशदानाम एसी देवी दवमीय क्षमाणम संस्मयमाना युवतिः पुरस्ताद आविर्वक्षांसि कृणुते विभाति। वेदों में वैज्ञानिक तत्व। वेदों में भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, गणित शास्त्र, पर्यावरण, वृष्ट विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, आयुर्वेद आदि की दृष्टि से सहस्त्रों मंत्र विद्यमान है। श्री मधुसूदन ओझा, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, मोतीलाल शास्त्री, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आदि विद्वानों ने वेदों में विद्यमान वैज्ञानिक तत्वों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। डॉक्टर वी के वर्मा ने भौतिक विज्ञान की दृष्टि से वेदों का अध्ययन किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को सभी सत्य विद्याओं का स्रोत बताया है। डॉक्टर डी डी मेहता और आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ने वेदों में विविध विज्ञानों का विस्तृत वर्णन किया है। डॉक्टर वी जी रेले ने वैदिक देवों को जीव विज्ञान के तत्वों के रूप में प्रतिपादित किया है। वेदों का शास्त्रीय महत्व। शतपथ ब्राह्मण में ऋक, यजुः, साम और अथर्व इन चारों वेदों के अध्ययन का अनंत पुण्य बताया गया है। सारी पृथ्वी के दान से भी बढ़कर प्रतिदिन वेद के अध्ययन का महत्व बताया है। इसे योग क्षेम, प्राण ऐश्वर्य, अन्न समृद्धि आदि की प्राप्ति का उल्लेख किया है। यावंतम ह वा इमाम पृथ्वीं वित्तेन पूर्णाम ददत लोकम जयति त्रिस्तावंतम जयति भूयांसम चाक्षय्यम या एवं विद्वान अहरह स्वाध्याय मधीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। तीन, वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से चार भागों में बांटा जाता है। एक, वेदों की संहिताएं। दो, ब्राह्मण ग्रंथ। तीन, आरण्यक ग्रंथ। चार, उपनिषद। वैदिक संहिताएं। वेदों की चार संहिताएं हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। संहिता का अर्थ है परह सन्निकर्षः संहिता, पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप। व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के योग पद समूह को संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि से मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। चार ऋत्विक। चार वेदों के अनुसार यज्ञ में चार ऋत्विक या ऋत्विज होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होत्र वेद भी कहते हैं। अध्वर्यी यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, यही यज्ञ भी करता है और यज्ञ में घृत आदि की आहुति देता है। उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करता है, ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता है, वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में चारों ऋतुजों के कर्मों का निर्देश है, ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुस्वान् गायत्रं त्वो गायति सक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रा विमीत उत्वः। वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन वर्ण विषय की दृष्टि से समस्त वैदिक वाङ्मय को दो भागों में बांटा जाता है, एक कर्मकांड दूसरा ज्ञानकांड। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इनमें विविध यज्ञों के कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञ कर्मकांड से संबंध मंत्र हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या है। ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्य ग्रंथ और उपनिषदे हैं। आरण्य ग्रंथों में यज्ञ क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसी आध्यात्मिक व्याख्या को आधार बनाकर उपनिषदों की सृष्टि हुई है। उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इनमें ब्रह्मा ईश्वर जीव प्रकृति मोक्ष आदि का वर्णन है, अतएव आरण्यक और उपनिषदों को ज्ञानकांड कहा जाता है। वेदांग वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। ये वेदों के व्याकरण यज्ञों के काल निर्धारण शब्दों के निर्वचन मंत्रों की पद्यात्मक रचना यज्ञीय क्रियाकलाप का सांगोपांग विवेचन एवं मंत्रों के उच्चारण आदि विषयों से संबद्ध है। वेदांग छह हैं, शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कल्प। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। ये वेदांग सामान्यतया सूत्र शैली में लिखे गए हैं, इनका विवेचन आगे किया जाएगा। वेदों के संरक्षण के उपाय अष्टविकृतियां। अष्टविकृतियां वेद के मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, इसके लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इन उपायों को विकृतियां कहते हैं। इनमें मंत्रों के पदों को घुमा फिराकर अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता था। ये विकृतियां आठ हैं। इनके नाम हैं जटापाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। इनमें घन पाठ सबसे कठिन और बड़ा होता है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन अष्टो विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभिः। तीन अन्य पाठ उपरोक्त आठ विकृतियों के अतिरिक्त तीन पाठ और हैं, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। वेदों की सुरक्षा के इन उपायों में से छह प्रकार मुख्य थे, तदनुसार यहाँ इनके उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संहिता पाठ, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। पद पाठ, इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है। यदि कोई संधि है तो उस संधि को तोड़ दिया जाता है, प्रत्येक पद अपने स्वतंत्र रूप में रहेगा। यदि संहिता पाठ के चार पदों को क ख ग घ कहेंगे तो पद पाठ में इन्हें क ख ग घ कहेंगे। तीन क्रम पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है, क ख ख ग ग घ। चार जटा पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है, क ख ख क क ख ख ग ग ख ख ग। शिखा पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है, क ख ख क क ख ग ख ग ग ख ख ग घ। घन पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है, क ख ख क क ख ग ग ख क क ख ग। उदाहरण के रूप में यह संहिता पाठ और पद पाठ आदि दिए जा रहे हैं। संहिता पाठ, ओषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। पद पाठ, ओषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। क्रम पाठ, ओषधय संवदन्ते वन्दन्ते सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञा। जटा पाठ, ओषधय सम ओषधय ओषधय संवदन्ते वन्दन्ते संवदन्ते इत्यादि। शिखा पाठ, ओषधय सम ओषधय ओषधय संवदन्ते वन्दन्ते संवदन्ते सोमेन इत्यादि। घन पाठ, ओषधय सम ओषधय ओषधय संवदन्ते वंदन्ते सम औषधय, औषधय सम वंदन्ते इत्यादि। इन अष्ट विकृतियों का लाभ यह हुआ कि सहस्त्रों वर्ष बीतने पर भी संहिताओं के मंत्रों में आज तक कोई प्रक्षेप, परिवर्तन आदि नहीं हुआ है। सभी मंत्र मूल रूप में अविकल सुरक्षित रहे हैं। इसके लिए सारा संसार वेद पाठी विद्वानों का ऋणी है और रहेगा। उनके प्रति जितनी कृतज्ञता प्रकट की जाए कम है। 5. वैदिक वांग्मय सारणी 1, ऋग वेद संहिता। क, शाखा शाकल बाशकल। ख, ब्राह्मण 1, ऐतरेय 2, कौशितकीय शांखायन ब्राह्मण। ग, आरण्यक 1, ऐतरेय 2, शांखायन आरण्यक। घ, उपनिषद ऐतरेय कौशितकीय बाशकल मंत्रोपनिषद। ग, कल्प सूत्र श्रौत सूत्र आश्वलायन 2, शांखायन श्रौत सूत्र। गृह सूत्र आश्वलायन शांखायन कौशितकी सांबव्य। गृह सूत्र अमुद्रित शौनक भारवीय शाकल्य पैंगी पराशर बहवृच ऐतरेय। गृहसूत्र 2 क, शुक्ल यजुर्वेद संहिता। क, शाखा माध्यन्दिन वाजसनेयी 2 कांडव। ख, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। ग, आरण्यक बृहदारण्यक। घ, उपनिषद ईशोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। ग, कल्प सूत्र श्रौत कात्यायन श्रौत सूत्र। गृहसूत्र पारस्कर गृहसूत्र सुलभ सूत्र 1, बौधायन 2, मानव 3, आपस्तंभ 4, कात्यायन 5, मैत्रायणीय 6, हिरण्यकेशी सत्याषाढ़ 7, 12 शुल्भ सूत्र। ख, कृष्ण यजुर्वेद संहिता। क, शाखा 1, तैत्तिरीय 2, मैत्रायणीय 3, कठ 4, कठ कपिष्ठल कठ। ख, ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। ग, आरण्यक तैत्तिरीय आरण्यक। उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद कठ उपनिषद श्वेता स्वतर 4, मैत्रायणी 5, महानारायण उपनिषद। ग, कल्प सूत्र श्रौत सूत्र 1, बौधायन 2, वधूल 3, मानव 4, भारद्वाज 5, आपस्तंभ 6, काठक 7, अत्याषाढ़ 8, बाराह 9, वैखानस श्रौत सूत्र। गृह सूत्र बौधायन 2, मानव 3, भारद्वाज 4, आपस्तंभ 5, काठक 6, अग्निवेश 7, हिरण्यकेशी 8, बाराह 9, वैखानस 10, चारायणीय 11, बैजवाप। गृह सूत्र सुलभ सूत्र शुक्ल यजुर्वेद वत्। ग, सामवेद संहिता। क, शाखा 1, कौथुम 2, राणायनीय 3, जैमिनीय। ख, ब्राह्मण कौथुमीय 1, तांडे महाब्राह्मण पंचविंश या प्रौढ़ 2, षड्विंश ब्राह्मण एवं अद्भुत ब्राह्मण 3, सामविधान 4, आर्षेय 5, मंत्र या उपनिषद 6, देवताध्याय 7, वंश 8, संहितोपनिषद ब्राह्मण। जैमिनीय 1, जैमिनीय आर्षेय 2, जैमिनीय तलवकार 3, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। ग, आरण्यक। घ, उपनिषद 1, छांदोग्य 2, केन उपनिषद। ग, कल्प सूत्र श्रौत सूत्र आर्षेय कल्प सूत्र 2, क्षुद्र कल्प सूत्र 3, जैमिनीय श्रौत सूत्र 4, लाट्यायन श्रौत सूत्र 5, द्राह्यायन श्रौत सूत्र 6, निदान सूत्र 7, उपनिदान सूत्र। गृह सूत्र 1, गोभिल 2, कौथुम 3, खादीर 4, द्राह्यायण 5, जैमिनीय गृहसूत्र अप्रकर्षित 6, गौतम 7, छांदोग्य 8, छांदोग्य गृहसूत्र। घ, अथर्ववेद संहिता। शाखा 1, शौनक 2, पैप्लाद। ख, ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद 1, प्रश्न 2, मुंडक 3, मांडुक्य उपनिषद। ग, कल्प सूत्र श्रौत सूत्र वैतान श्रौत सूत्र गृह सूत्र कौशिक सूत्र धर्म सूत्र सभी वेदों से संबद्ध। क, प्राचीन गौतम धर्म सूत्र 2, बौधायन धर्म सूत्र 3, आपस्तंभ धर्म सूत्र। ख, गौण वासिष्ठ धर्म सूत्र हारित 3, हिरण्यकेशी 4, शंख लिखित 5, वैखानस 6, विष्णु धर्म सूत्र। ग, अन्य धर्म सूत्रकार 1, अत्रि 2, उष्णस 3, कर्णव 4, कश्यप 5, गार्ग 6, चियमन 7, जातुकर्ण 8, देवल 9, पैठिनसी 10, बृहस्पति 11, भारद्वाज 12, सुमंतु। वेदों के उपवेद, चारों वेदों के ये उपवेद माने जाते हैं। 1, ऋग्वेद आयुर्वेद 2, यजुर्वेद धनुर्वेद 3, सामवेद गांधर्ववेद चार अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद।